एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में, आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसे शायद ही कोई हो जिसने सुना ना हो। कार्ल मार्क्स, एक ऐसा विचारक जिनके विचारों ने मतलब क्रांतियां ला दी, साम्राज्यों को हिला दिया, और आज भी देखिए उनकी मृत्यु के लगभग 140 साल बाद भी उनके सिद्धांत वो बहस और चर्चा के केंद्र में है।
हाँ, ये बात तो है। कार्ल हेनरिक मार्क्स, 1818 से 1883, जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और हाँ क्रांतिकारी भी। उनका प्रभाव इतना गहरा रहा है और इतना स्थायी कि उन्हें अनदेखा करना तो नामुमकिन है।
बिल्कुल।
तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई क्यों उनके विचार इतने शक्तिशाली साबित हुए और आज हमारे लिए उनके क्या मायने हैं, क्या प्रासंगिकता है।
तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्क्स जिस दुनिया में सोच रहे थे, लिख रहे थे, वो तो काफी उथल पुथल वाली थी, है ना?
बिल्कुल, मेरा मतलब है औद्योगिक क्रांति।
बिल्कुल,
वो तो पूरे यूरोप को बदल रही थी उस वक्त। कल्पना कीजिए जरा, कारखाने उग रहे थे जैसे मशरूम उगते हैं, शहर बेतहाशा बढ़ रहे थे।
हाँ,
लोग गांवों से शहरों की ओर भागे जा रहे थे काम की तलाश में,
और इसी से एक नया वर्ग पैदा हो रहा था,
मजदूर वर्ग।
हाँ मजदूर वर्ग, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा कहा, प्रोलेटेरियट, और साथ ही साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई वो भी लगातार बढ़ रही थी। तो ये वो कच्ची हकीकत थी, वो जमीन थी जिसे मार्क्स समझने की कोशिश कर रहे थे, और सिर्फ समझने की नहीं, बदलने की भी।
और उस समय का जो बौद्धिक माहौल था वो भी तो काफी गर्म था।
हाँ बिल्कुल, एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति की गूंज थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, दूसरी तरफ जर्मनी में हेगल जैसे बड़े दार्शनिक थे,
हाँ हेगल,
जो इतिहास और प्रगति के बारे में बड़े बड़े विचार पेश कर रहे थे। डायलेक्टिक्स,
हाँ डायलेक्टिक्स, मतलब ये विचार कि इतिहास विरोधाभासों के टकराव से, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस से आगे बढ़ता है। हालांकि एक बड़ा फर्क था, मार्क्स ने हेगल के आदर्शवाद को कह सकते हैं कि सिर के बल खड़ा कर दिया।
अच्छा, कैसे?
देखिए, जहां हेगल विचारों को, स्पिरिट को इतिहास का चालक मानते थे, मार्क्स ने कहा नहीं, असल चालक तो भौतिक परिस्थितियां हैं, खासकर आर्थिक संबंध, ऐसे उत्पादन होता है, किसके पास उत्पादन के साधन है। इसे ही उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा, और ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव।
ये तो काफी दिलचस्प है। तो मतलब उन्होंने हेगल के औजार इस्तेमाल किए, लेकिन उनको बिल्कुल पलट दिया, है ना?
हाँ बिल्कुल, नतीजे बिल्कुल अलग थे।
उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ खास है जो उनके विचारों को समझने में मदद करे?
देखिए, उनका जन्म प्रशिया में हुआ था, आज का जर्मनी, ट्रायर शहर में, एक ठीक ठाक मध्यवर्गीय परिवार था, पिता वकील थे। मार्क्स ने पहले कानून पढ़ा, फिर दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की। बर्लिन में वो युवा हेगेलियन समूह से जुड़े। ये लोग तत्कालीन व्यवस्था के, धर्म के, राज्य के बड़े आलोचक थे, तो यहीं से उनके जो रैडिकल विचार हैं वो पनपने लगे।
और फिर वो पेरिस गए, वो दौर शायद बहुत अहम था उनके लिए।
हाँ बहुत, पेरिस में ही उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से।
एंगल्स,
हाँ, जो फिर जीवन भर उनके सबसे करीबी दोस्त बने, उनके सहयोगी और यहाँ तक कि आर्थिक मददगार भी।
अच्छा,
एंगल्स खुद एक फैक्ट्री मालिक के बेटे थे, तो उन्होंने मार्क्स को मजदूर वर्ग की जो स्थितियां थी उनका फर्स्ट हैंड ज्ञान दिया।
अच्छा,
तो पेरिस में और फिर बाद में ब्रुसेल्स में, जब उन्हें पेरिस से निकाल दिया गया, वहां रहते हुए दोनों ने मिलकर अपने विचारों को और मजबूत किया, विकसित किया, और फिर 1848 में उन्होंने वो दस्तावेज प्रकाशित किया जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
जी हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
जिसका वो मशहूर नारा है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है, यही था ना?
तो बिल्कुल, वो एक कालजयी नारा। और देखिए, मैनिफेस्टो सिर्फ कोई अकादमिक लेख नहीं था।
नहीं, वो तो एक कॉल टू एक्शन था।
हाँ, वो एक राजनीतिक कार्रवाई का आह्वान था, एक घोषणा पत्र। इसमें उन्होंने इतिहास की अपनी व्याख्या पेश की कि सारा इतिहास असल में वर्ग संघर्ष का इतिहास है,
क्लास स्ट्रगल।
हाँ, क्लास स्ट्रगल, मालिकों और मजदूरों के बीच, शोषक और शोषित के बीच का संघर्ष। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पूंजीवाद के अंदर ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा और अंत में मजदूर वर्ग क्रांति करके सत्ता पर कब्जा कर लेगा।
और 1848 तो यूरोप में वैसे भी क्रांतियों का ही साल था।
बिल्कुल।
इसके बाद फिर मार्क्स को लंदन जाना पड़ा निर्वासित होकर, और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा गुजारा।
हाँ, लंदन में निर्वासन का जीवन, और वो जीवन आसान नहीं था। भयानक गरीबी थी, बहुत संघर्ष थे। वे अक्सर इंगल्स की आर्थिक मदद पर ही निर्भर रहते थे।
ये तो बड़ी विडंबना
है ना? दुनिया को पूंजी का इतना गहरा विश्लेषण देने वाला विचारक, वो खुद अक्सर पैसे पैसे को मोहताज रहता था। लेकिन इसी दौर में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में घंटों बैठकर शोध करके उन्होंने अपनी वो महान कृति लिखी,
दास कैपिटल।
हाँ, दास कैपिटल यानी पूंजी, जिसका पहला खंड 1867 में प्रकाशित हुआ।
दास कैपिटल, ये किताब तो मतलब बहुत भारी भरकम मानी जाती है।
हाँ है, तो जटिल है।
अगर आसान शब्दों में समझना हो तो इसका इसका मुख्य विचार क्या था, क्या कहना चाहते थे वो इसमें?
देखिए, दास कैपिटल असल में पूंजीवाद की जो पूरी मशीनरी है वो कैसे काम करती है, उसका एक बहुत गहरा विस्तृत विश्लेषण है। मार्क्स का जो केंद्रीय तर्क था वो ये कि पूंजीवादी व्यवस्था का जो मुनाफा है वो आता है अतिरिक्त मूल्य से, सरप्लस वैल्यू।
अतिरिक्त मूल्य, ये क्या है? अच्छा,
तो ये जो बीच का अंतर है, वो हिस्सा जो मजदूर ने पैदा किया पर उसे मिला नहीं, वही पूंजीपति का मुनाफा बनता है।
यानी मुनाफा सिर्फ बाजार की चाल या उद्यमी के कौशल का नतीजा
नहीं
बल्कि मजदूर के श्रम का वो हिस्सा है जो उसे दिया ही नहीं गया।
बिल्कुल, मार्क्स के लिए ये सिर्फ एक आर्थिक तथ्य नहीं था,
नहीं,
ये शोषण था, एकदम साफ, व्यवस्था के मूल में बसा हुआ शोषण।
ये तो वाकई एक विस्फोटक विचार रहा होगा उस समय।
हाँ बिल्कुल, और इसी शोषण से जुड़ा है उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार, वो है अलगाव का, एलियनेशन।
अलगाव?
किस तरह का अलगाव? मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद में मजदूर अपने काम से ही कट जाता है, एलिनेट हो जाता है। देखिए, वो जो चीज बना रहा है वो उसकी अपनी नहीं होती, उसे बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो बस एक तय ढर्रे पर काम करता रहता है,
जैसे मशीन का कोई पुर्जा।
बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ ही मजदूरों से भी कटावा महसूस करता है, क्योंकि उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है, और अंततः वो अपनी मानवीय प्रकृति से ही, अपनी सृजनशीलता से ही अलग थलग पड़ जाता है। इंसान बस इंसान न रहकर एक वस्तु बन जाता है।
ये अलगाव वाली बात, अरे ये तो आज भी मतलब कितनी सही लगती है ना, खासकर जिस तरह की नौकरियां आज बढ़ रही हैं, गिग इकोनॉमी वगैरह में।
निश्चित रूप से ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। मार्क्स का एक और दिलचस्प विचार है पण्य पूजा का, कमोडिटी फेटिशिज्म।
पण्य पूजा, ये क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि पूंजीवाद में हम चीजों को, यानी कमोडिटीज को, ऐसे देखते हैं मानो उनका अपना कोई जादुई मूल्य हो जो उनमें खुद ही बसा हो।
अच्छा,
हम ये भूल जाते हैं कि उन चीजों के पीछे इंसानी श्रम लगा है, सामाजिक रिश्ते जुड़े हैं। बाजार में हमें क्या दिखता है? चीजों का रिश्ता चीजों से,
हाँ
इंसानों का रिश्ता इंसानों से नहीं।
हाँ
सोचिए, आज की जो उपभोक्ता संस्कृति है, कंज्यूमर कल्चर, उस पर यह बात कितनी सटीक बैठती है।
हाँ ये तो है, हम ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के पीछे, ये सोचे बिना कि इन्हें बनाया किसने, किन हालातों में बनाया।
बिल्कुल, हम चीजों के सामाजिक पहलू को अनदेखा कर देते हैं।
तो ये थे मार्क्स के कुछ मुख्य विचार, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और अलगाव, पण्य पूजा, ये सब मिलकर पूंजीवाद की एक जबरदस्त आलोचना तैयार करते हैं।
सही कहा, और उनका मानना था कि पूंजीवाद टिकाऊ नहीं है, वो अपने अंतर्विरोधों के कारण ही खत्म होगा।
कैसे?
देखिए, मुनाफे की जो लगातार होड़ है उससे बार बार आर्थिक संकट आते हैं,
हाँ ये तो हम देखते हैं,
और साथ ही मजदूर वर्ग का आकार बढ़ता जाता है, उनमें असंतोष बढ़ता है, तो ये सब मिलकर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा करेंगे जहां पूंजीवाद टिक नहीं पाएगा और समाजवाद उसकी जगह लेगा।
ये उनका मानना था।
जाहिर है, इतने क्रांतिकारी विचारों की प्रतिक्रिया भी जबरदस्त हुई होगी, उनके समय में भी और बाद में भी।
बिल्कुल, उनके विचारों ने तो पूरी 20वीं सदी को हिलाकर रख दिया। रूस, चीन, क्यूबा और भी कई देशों में क्रांतियां हुई जिन्हें मार्क्स के विचारों से प्रेरणा मिली।
हाँ,
दुनिया भर में मजदूर आंदोलन खड़े हुए, ट्रेड यूनियन बने, सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियां बनी, इन सब पर मार्क्स का गहरा असर पड़ा। और अकादमिक दुनिया में तो
अरे, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान,
सब जगह।
हाँ, यहाँ तक कि साहित्य और कला आलोचना में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक प्रमुख धारा बन गया। जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल की क्रिटिकल थ्योरी, वो भी तो इसी से निकली।
लेकिन जहां मार्क्सवाद का नाम आता है वहां विवाद भी खड़े हो जाते हैं।
हाँ, ये भी सच है।
खासकर 20वीं सदी के जो साम्यवादी शासन थे उनको लेकर बहुत सवाल उठते हैं।
ये एक बहुत बड़ा, आप देखिए, बहुत जटिल सवाल है। आलोचक कई सारी बातें उठाते हैं. एक तो ये कि जो मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी
पूंजीवाद के अनिवार्य पतन की,
हाँ, कि वो अनिवार्य रूप से खत्म हो जाएगा, वो बात तो मतलब पूरी तरह सही साबित नहीं हुई.
हाँ ये तो है.
पूंजीवाद तो कहीं ज्यादा लचीला निकला, उसने खुद को बदला, अनुकूलित किया. ये एक आलोचना है. दूसरी उनके श्रम मूल्य सिद्धांत को लेकर है,
लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू.
जी, आधुनिक अर्थशास्त्री इसे ज्यादातर नहीं मानते. उनका कहना है कि कीमतें सिर्फ श्रम से तय नहीं होती, बल्कि मांग और आपूर्ति जैसे कई और कारक भी होते हैं.
और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इतिहास को कुछ ज्यादा ही मतलब एक सीधी रेखा में देखा, आर्थिक नियतिवाद जिसे कहते हैं.
हाँ, कि सब कुछ आर्थिक शक्तियों से ही तय होता है.
व्यक्ति की भूमिका, विचारों की भूमिका, संस्कृति की भूमिका, इनको उन्होंने कम आंका. ये भी एक आलोचना है.
और शायद सबसे गंभीर आलोचना उन सत्तावादी शासनों से जोड़कर की जाती है जिन्होंने मार्क्सवाद का नाम तो लिया,
जैसे सोवियत संघ या चीन.
हाँ, लेकिन जहां मानवताधिकारों का हनन हुआ, लोकतंत्र को कुचला गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए मार्क्स के विचारों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
ये एक बड़ा सवाल है,
बहुत बड़ा. उनके समर्थक कहते हैं कि उन शासनों ने मार्क्स के असल विचारों को तोड़ा मरोड़ा, उनसे बिल्कुल अलग थे वो. जबकि आलोचक कहते हैं कि नहीं, मार्क्स के विचारों में ही कहीं ना कहीं तानाशाही के बीच छिपे थे, खासकर वो जो सर्वहारा की तानाशाही की बात है,
डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट. हाँ, ये बहुत विवादास्पद रहा है.
बिल्कुल. तो ये बहस तो चलती रहती है और शायद कभी खत्म नहीं होगी.
एक और आलोचना आजकल काफी सुनने में आती है कि मार्क्स ने सब कुछ वर्ग के चश्मे से देखा, क्लास रिडक्शनिज्म.
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे बाद के जो मार्क्सवादी विचारक हुए उन्होंने संबोधित करने की कोशिश भी की है. नारीवादी मार्क्सवाद या पोस्ट कॉलोनियल मार्क्सवाद जैसी धाराएं इसी से निकली. तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, मार्क्स जितने प्रभावशाली हैं उतने ही विवादास्पद भी. उनके विचारों की लगातार चीरफाड़ होती रही है और होती रहेगी.
उनके जीवन से जुड़ा कोई रोचक किस्सा, कुछ ऐसा जो उनके व्यक्तित्व पर थोड़ी रोशनी डाले. आपने उनकी गरीबी का जिक्र किया था.
हाँ, वो और उनका परिवार अक्सर बहुत मुश्किल हालात में रहे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें साहित्य से बहुत गहरा लगाव था.
अच्छा.
हाँ, वो शेक्सपियर, दांते, गोएथे, इन सबके बड़े प्रशंसक थे और कहते हैं कि उनके लंबे लंबे हिस्से उन्हें जुबानी याद थे, वो सुना सकते थे.
अरे वाह.
उन्होंने खुद भी क्रांतिकारी बनने से पहले कविताएं और नाटक वगैरह लिखे थे. तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक रूखे सूखे अर्थशास्त्री नहीं थे, उनमें एक साहित्यिक, एक कलात्मक मन भी था.
और उनकी वो मशहूर दाढ़ी, वो तो एक आइकॉन बन गई है.
हाँ, वो उनकी पहचान बन गई. हालांकि कहते हैं कि वो अपनी शक्लो सूरत को लेकर काफी सचेत रहते थे और अपनी दाढ़ी को संवारने में काफी समय भी लगाते थे.
हाँ, अच्छा.
और परिवार में उन्हें प्यार से मूर नाम से भी पुकारा जाता था, शायद उनकी गहरी रंगत और काले बालों की वजह से.
तो कुल मिलाकर देखें तो मार्क्स एक बड़े ही जटिल शख्सियत थे जिनके विचारों ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है. अब भले ही उनके भविष्यवाणियां, जैसे आपने कहा, शब्दशः सही न हुई हों या उनके नाम पर जो शासन बने वो विफल हो गए हों, क्या आज भी उनके विश्लेषण में कुछ दम है? क्या वो आज भी प्रासंगिक है?
मेरे ख्याल से तो हाँ, बिल्कुल है. देखिए, आज भी जब हम बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की बात करते हैं या वैश्विक पूंजीवाद के जो प्रभाव हैं, अच्छे बुरे उनको देखते हैं, या फिर काम की जगहों पर कर्मचारियों के अधिकारों की बात हो, उनके अलगाव की समस्या हो,
हाँ,
या फिर ये जो उपभोक्ता संस्कृति है उस पर सवाल उठते हैं, तो इन सब मुद्दों को समझने के लिए मार्क्स के विचार और उनकी दी हुई अवधारणाएं वो हमें एक जरूरी, एक आलोचनात्मक लेंस जरूर देती हैं.
एक अलग नजरिया.
वो हमें सतह के नीचे देखने के लिए उकसाते हैं, सत्ता की संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए और ये पूछने के लिए कि भाई, ये जो व्यवस्था चल रही है, ये किसके फायदे के लिए काम कर रही है.
उनका वो कथन याद आता है जो बहुत मशहूर है, दार्शनिकों ने अब तक केवल दुनिया की व्याख्या की है जबकि असल मुद्दा उसे बदलना है. ये शायद उनके पूरे काम का सार है.
बिल्कुल, एकदम सही कहा. उनका जोर सिर्फ समझने पर नहीं था, बदलने पर था. प्राक्सिस यानी सिद्धांत और व्यवहार की एकता, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और शायद इसीलिए उनके विचार सिर्फ किताबों तक या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहे, वो सड़कों पर उतरे, आंदोलनों में शामिल हुए.
तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए क्या कोई एक विचार छोड़ना चाहेंगी आप?
शायद यही कि मार्क्स को पढ़ना या उनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, चाहे आप उनसे सहमत हों या असहमत, क्योंकि वो आधुनिक दुनिया को बनाने वाले और हाँ, उस पर सवाल उठाने वाले सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक हैं. और आज की इस तेज रफ्तार, डिजिटल और अक्सर बहुत असमान दुनिया में उनके उठाए हुए सवाल शोषण के बारे में अलगाव के बारे में, सत्ता और न्याय के बारे में वो शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आज सोशल मीडिया की जो लत है, या गिग इकोनॉमी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका अकेलापन, क्या ये मार्क्स के अलगाव या पढ़ने पूजा के नए रूप नहीं है?
ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल,
मार्क्स को खारिज कर देना शायद आसान हो, लेकिन उनके उठाए सवालों को नजरअंदाज करना वो मुश्किल है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।